أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم یہ چیپٹر جو ہے لیکچر نمبر 26 تخلیق کا قانون، اس کا پیج نمبر ہے 228، یہاں سے شروع کریں گے. ذرا یاد دہانی کے لیے کہ کل ہم نے کیا پڑھا، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل ہم نے جو پڑھا اس کا آخری جملہ یہ تھا کہ راستہ جو ہے یہ لاشعور ہے اور مسافر جو ہے یہ شعور ہے، یعنی شعور جو ہے یہ ایک مسافر ہے جو لاشعور کی راہ پہ چل رہا ہے، یعنی راستے کا وجود اپنے طور پر ازل سے موجود ہے، مسافر اس پہ قدم بہ قدم چلتا ہے، ہر قدم پہ تغیر کا سامنا کرتا ہے. اب شعور میں جتنا زیادہ ہمارا انہماک ہوتا ہے تو ہماری توجہ لاشعور سے ہٹ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اب یہ زندگی کی تمام طرزیں چونکہ راستے یعنی لاشعور پر قائم ہیں، تو اگر ہمارا دھیان لاشعور سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہمیں شعوری زندگی میں دشواریاں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. اسی لیے جتنا زیادہ وقت راستے کو یعنی لاشعور میں غور و فکر کیا جائے گا تو اسی مناسبت سے زندگی زیادہ عمل کے راستے طے کرے گی. یہ قانون بہت توجہ سے ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ وقت اپنا لاشعور کی طرف غور و فکر میں صرف کرنا ضروری ہے. تو آج یہ جو ہم عنوان پڑھ رہے ہیں یہ ہے شعوری قدریں اور فکری دنیا. اب یہ شعوری قدریں کیا ہیں اور یہ فکری دنیا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم اپنی سوچوں میں ایک دنیا بسائے ہوئے ہیں اس کا نام ہے فکری دنیا. اب یہاں پہ ایک یہ کہ ہم خیالی پلاؤ پکاتے رہیں تو وہ کھچڑیاں پکتی رہیں، یا ہم اس کو پراپرلی وہاں پہ توجہ صرف کرنا سیکھ لیں تو فکری دنیا میں رہنا. اب یہ دو چیزیں ہیں، شعوری قدریں ہماری کیا ہیں اور یہ جو شعور کی قدریں یعنی شعور نے اپنے آپ کو جس طرح سے ارینج اور آرگنائز کیا ہے، جس طرح سے اس نے خود کو بنایا ہے، اس کو کوریلیٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے فکری دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کیسے کرنا ہے. یہ غور کریں کہ ہمارے ہاں غور و فکر ہی سے منع کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ فکری دنیا غور و فکر ہوتا ہی تب ہے جب بندہ فکری دنیا میں جائے. اب اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ رنگ و بو کی دنیا میں ہم شعور سے لاشعور کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زندگی کے تمام اعمال و حرکات کا تعلق لاشعور سے ہے. انسان کی توجہ جس قدر زیادہ شعوری زندگی پر ہوتی ہے اسی مناسبت سے لاشعور میں توجہ کم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک قانون ہے کہ ہماری توجہ ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ رہ سکتی ہے، یہ اس کی محدودیت ہے یا اس کی مجبوری ہے. تو ہمیں اپنی توجہ کو کیسے بانٹنا ہے، کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنا وقت کس چیز کو دینا ہے، یہ پروگرام ہم نے خود طے کرنے.
तो इंसान की तवज्जो जिस कदर ज्यादा शौरी जिंदगी पे होती है, और आप देखें कि ज्यादातर लोगों की सारी तवज्जो अपनी शौरी जिंदगी पर ही होती है, तो उसी मुनासबत से फिर लाशौर में तवज्जो कम हो जाती है। अब चूंकि जिंदगी का दारो मदार लाशौर पर है, इसलिए शऊर में ज्यादा तवज्जो मरकूज होने से क्या होता है कि जिंदगी के आमाल और उनकी कदरें कम हो जाती हैं। अब हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं जी मैं ये ख्वाहिश करता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए कि वो बातिन में एक चीज नहीं चाह रहे होते, बातिन में वो चीज नहीं चाह रहे होते, लिहाजा वो शऊर में नहीं आती, यानी लाशौर में चीज को स्टैब्लिश नहीं कर रहे, लिहाजा वो शऊर में नहीं आ रही, इसलिए शऊर में ज्यादा तवज्जो मरकूज होने से क्या होता है जिंदगी के अमाल और उसकी कदरें कम हो जाती हैं। अब शऊर का ज्यादा से ज्यादा इनहमाक, शऊरी हरकत में रहने की दलील है, और जब इंसान शऊरी कदरों से हटकर लाशऊर यानी फिक्री दुनिया में दाखिल हो जाता है, देखा लाशऊर का फिक्री दुनिया में दाखिल हो जाता है, तो शऊर की गिरफ्त कम हो जाती है। लाशऊर जो है ये मकानियतों की तामीर करता है, हालांकि लाशऊर जमानियत है। आलम मकान या आलम खल्क में, ये जो हमारा आलम खल्क जो हमें जहरी तौर पर नजर आता है, इसमें मकान गालिब है, स्पेस गालिब है, और जमान मखलूब है, यानी टाइम जो है वो बेस लाइन पर चला जाता है, यानी वो नीचे होता है और जाहरी तौर पे हमें मकानियत नजर आती है। मफहूम ये है कि जब हम शऊरी जिंदगी में सफर करते हैं तो हमारे ऊपर शऊर का गलबा होता है और लाशऊर मखलूब रहता है, लेकिन जब हम मकानियत से गुजरकर जमानियत में कदम बढ़ाते हैं तो लाशऊर गालिब हो जाता है और शऊर मखलूब हो जाता है। अब मकान की असल नस्मा मुफरद है और खुद मकान यानी मकानियत यानी स्पेस ये नस्मा मुरक्कब है। अब ये नस्मा मुफरद की तामीर आलम में अमर में और नस्मा मुरक्कब की तामीर आलम में खल्क में होती है। जिंदगी की तमाम हरकात और सकनात ये तीन हरकतों पर कायम हैं, हरकत उला, हरकत सानी और हरकत आखिर। अब ये हरकत उला यानी पहली हरकत, हरकत सानी यानी दूसरी हरकत, और हरकत आखिर यानी उसका मजहर बनना। अब इसी बात को एक और तरह से भी सुन रखें कि अल्लाह कहता है मैंने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया, तुम इस मिट्टी में लौटाए जाओगे और फिर इसी मिट्टी से उठाए जाओगे। ये भी तीन हरकतें हैं। ये तीन हरकतें, हरकत उला पहली हरकत, ये रूहे आजम का दर्जा भी है, हरकत सानी ये रूहे इंसानी का दर्जा है, और हरकत आखर ये रूहे हैवानी का दर्जा हो गया। जिंदगी की तमाम हरकतों सकनात ये तीन हरकतों पर कायम, ये असल में तीनों हरकतें एक साथ चलती हैं। ये कभी नहीं होता कि हम एक पे कंसंट्रेट करें और दूसरी को इग्नोर कर दें। इसीलिए इस चीज को सीखने के लिए जब हम ये मशकें करते हैं तो लोग रहबानियत का ताना देते हैं। रहबानियत का मतलब यह है कि आपने बिल्कुल शऊर को इग्नोर कर दिया, लेकिन असल में इग्नोर नहीं करना होता, उसको बैलेंस करना होता है। ये है वो फर्क जो लोग नासमझी की वजह से इल्जाम लगा देते हैं कि ये बंदा रूहानियत की बात कर रहा है, ये बंदा तो दुनिया की बात क्यों कर रहा है, ये जो रूहानी बंदे हैं ये दुनियादारी की बात क्यों कर रहे हैं। भाई उन्हें बैलेंस करके चलना आता है, इसलिए वो दोनों निजामों को साथ साथ जान रहे होते हैं, जानते हैं। अब एक और बात ये सुन रखें कि कायनात जो है ये गुरेज और कशिश की हरकत पे कायम है, यानी कि ये
हरकत उला, हरकत सानी और हरकत आखिर को, ये सारा निज़ाम कशिश और गुरेज की हरकत पर कायम है। हर चीज एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है और हर चीज एक दूसरे से दूर हो रही है। गुरेज और कशिश का ये अमल जिंदगी में आमालो हरकत बनने का मूजिब है। अब कशिश और गुरेज के तीन दायरे, पहला दायरा लतीफा है, अख्फा और लतीफा है, खफी है। दूसरा दायरा लतीफा है, सिरी और लतीफा है, रूही है। और तीसरा दायरा लतीफा है, कल्बी और लतीफा है, नफसी है। अब ये तीन दायरे, तो ये पहला दायरा जो है ये रूह आजम है, ये दूसरा दायरा लतीफा है, सिरी और लतीफा है, रूही का मजमू है यानी रूह इंसानी है। और तीसरा दायरा जो रूह हैवानी कहलाता है, ये लतीफा कल्बी और लतीफा नफसी का मजमू है। तो इन तीन दायरों का मुजाहरा होता है तो कोई ना कोई वजूद बनता है। वजूद गोश्त पोस्ट का हो, रोशनियों का हो या अनवार का हो। देखें किस तरह से एक ही जुमले में बता दिया कि हैवानी सतह पे ये वजूद गोश्त पोस्ट का होता है, इंसानी रूह इंसानी की सतह पे ये रोशनियों का होता है, और रूह आजम की सतह पे ये अनवार का होता है। कशिश और गुरेज का कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में मख्फी है, यानी ये अल्लाह के इस कानून जो अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है कुरान में आयत है, ये असल में कशिश और गुरेज के कानून की वजाहत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ लौट रही है। तो कशिश और गुरेज के इन दोनों रुखों में अलग अलग खदो खाल हैं, यानी जब ये वहां से अपने ओरिजिन से गुरेज करती है तो वजूद की तरफ कशिश कर रही है तो उसके खदो खाल और है, जब ये वजूद से गुरेज करके वापस अपने ओरिजिन अपने मंबा अपने मखजन की तरफ कशिश कर रही होती है तो इसके खदो खाल और हो जाते हैं। और ये खदो खाल कभी अनवार से मुरक्कब होते हैं, कभी रोशनियों से, तो कभी मिट्टी के जिस्म में नजर आते हैं। मिट्टी के जिस्म में ये जो गुरेज और कशिश का रुख है ये नस्म मुरक्कब है, और रोशनियों के खदो खाल और रोशनी के डायमेंशन से बनने वाला वजूद ये नस्म मुफरद और नस्म मुफरद की दुनिया है। और यही खदो खाल जब नूर में जलवा फरोज होते हैं तो ये नस्म मुतलक कहलाते हैं। इसी नस्म मुतलक को नूर मुरक्कब भी कहा जाता है। तो नस्म मुरक्कब की दुनिया में इंसान हैवानात और नबातात का शुमार है, और नस्म मुफरद में जिन्नात मलाइका अर्जी मलाइका समावी जन्नत और आसमानों का शुमार है, और मलाए आला में ग्रोह जिब्राइल ग्रोह मिकाइल ग्रोह इसराफील शामिल हैं, बैतुल मामूर से ऊपर के मुकामात हिजाब अजमत हिजाब किबरिया और हिजाब महमूद हैं, और ये मुकामात नस्मा मुतलक की तजल्ली हैं। बिल्कुल हर चीज वाज़े तौर पर इस पैराग्राफ में बता दी गई कि नस्मा मुरक्कब की रेंज क्या है, कि ये मादी दुनिया, मादी दुनिया जिसमें इंसान भी हैं, हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, और नस्म मुफरद जो है उसमें जिन्नात भी हैं, मलाइका अर्जी भी हैं, मलाइका समावी भी हैं, इसी में जन्नत और आसमानों का शुमार भी है। ये जो हमारी कैफियत जब अंदर से खुशी और सुकून और तमानियत की होती है तो ये इसी को जन्नत कहा जाता है। और ये जो हम किसी चीज को अपनी फहम में महसूस कर रहे होते हैं दर्जा ब दर्जा, वो जो छः आलम खफीफ और आलम शदीद के छः दर्जे हैं, उसको जब हम अपने शऊर से यानी महसूस कर रहे होते हैं तो गोया यही वो सित्तत अय्याम है।
और मलाए आला में ग्रोहे जिब्राइल, ये सब छठे शऊर के दर्जे हैं। ये मुकामात यानी फिर इससे ऊपर बैतुल मामूर से ऊपर के मुकामात जो हैं, ये हिजाब अजमत, हिजाब किबरी और हिजाब महमूद जो हैं, ये मुकामात नस्म मुतलक की तजल्ली हैं। यानी ये नस्म मुतलक का, यहाँ पे अगर आप नस्म मुतलक से वाकिफ नहीं होंगे तो आप ये मुकामात पार नहीं कर सकते। मौजूदात के तीनों रुख हर इंसान में मौजूद है। मौजूदात के मौजूद, जो चीजें मौजूद हैं वो उसके, ये तीनों रुख हर इंसान में मौजूद है। बताएं कोई कसर रह गई? कोई ये कहे कि जी नहीं जी हम किस काबिल हैं? भाई आपको अल्लाह ने काबिल बनाया है, आपके अंदर ये तीनों रुख मौजूद हैं। बात सिर्फ इनको एक्सप्लोर करने की और इनसे इस्तफादा करने की है, इनको इस्तेमाल करने की है। हम जब आलम तखलीत का तज़करा करते हैं तो हमारी मुराद रूह हैवानी है। जब हम जिन्नात की दुनिया, एराफ की दुनिया, आसमानों या फरिश्तों का तज़करा करते हैं तो हमारी मुराद रूह इंसानी है। और जब हम आलम नूर का तज़करा करते हैं तो हमारी मुराद रूह आज़म है। मफहूम ये हुआ कि कोई इंसान जब रूह हैवानी से वकूफ़ हासिल कर लेता है तो वो नस्म मुरक्कब मकानियत के आलमीन से वाकिफ हो जाता है। और जब कोई इंसान रूह इंसानी से वकूफ़ हासिल कर लेता है तो जिन्नात, फरिश्ते, बरज़ख, एराफ, हशर नशर, जन्नत दोज़ख और सातों आसमान से वाकिफ हो जाता है। इसी तरह जब कोई इंसान अपनी रूह आज़म से वाकिफ हो जाता है तो मलाए आला को, बैतुल मामूर को और बैतुल मामूर से ऊपर के मुकामात को देख लेता है। यानी ये दर्जे हैं इंसान के शर्फ के। कायनात तीन रुखों पर मुश्तमिल है। एक रुख नूरानी है, दूसरा रुख रोशनी है और तीसरा रुख तखलीत है। तखलीत का मतलब है खल्त मल्त होना, यानी मिक्स होकर कोई मादी शक्ल इख्तियार करना। इन तीनों रुखों में असल जमानियत यानी टाइम असल है। अब जमानियत से मुराद वो रास्ता है जिस रास्ते पर कायनात रवा दवा है, यानी जिस रास्ते पर ये कायनात का पूरा काफला रवा दवा है वो रास्ता असल में जमानियत है। अब गौर करें कि हमें जमानियत को समझना कितना जरूरी हो गया। अब इसका देखिए वो बता रहे हैं कि आलम तखलीत में यानी इस मादी जोन में रूहे हैवानी का आरिफ, वो बंदा जो रूहे हैवानी से वाकिफ हो जाता है वो विरूद में, गनूद में, मुराकबे में, कश्फ में और इल्हाम में इस बात का यकीन हासिल कर लेता है कि रूहे हैवानी के हवास पाबंद और मुकैद हैं। गौर करें, अब इसमें ये इस्तलाहात है। विरूद में यानी विरूद कहते हैं जैसे कोई चीज जहन में वारिद होती है। गनूद में यानी एक गनूदगी किसी कैफियत आती है। विरूद में ये बात किताब है कलंदर शऊर, उसमें इन इस्तलाहात को अलग से हजूर मुर्शिद करीम ने तफसील से उसकी तशरीह की है और बताया है कि ये क्या होती है। कि जब हम अचानक कोई चीज देखते हैं, वो मुराकबा करने बैठे तो वो महसूस नहीं हुआ कुछ के देखा या नहीं देखा, बस महसूस होता है कुछ देखा, क्या देखा ये नहीं समझ आती। महसूस होता है ऐसे एक एहसास सा होता है कि मैं कुछ था, कुछ देखा, कुछ हुआ, यानी कोई चीज वारिद हुई इस कैफियत को, इनिशियल कैफियत को वरूद कहते हैं। जब आप मुराकबे में गनूदगी में चले जाते हैं, मादी हवास सस्पेंड होने लगते हैं, तो एक गनूदगी किसी कैफियत तारी हो जाती है, तो उसमें जो कुछ हम देखते हैं वो समझ नहीं आता है। ये तो पता चलता है कि कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ये नहीं समझ आता। फिर मुराकबा है, मुराकबे की कैफियत वो है जब मादी हवास बिल्कुल सस्पेंड हो जाते हैं, फिर हम जो कुछ देखते हैं उसमें तसलसल आ जाता है, एक तरतीब आना शुरू हो जाती है, कुछ कुछ मफहूम भी समझ में आता है। फिर एक चीज है कश्फ, कश्फ का मतलब है खुलना, लुगवी मतलब, यानी जब जहन खुल जाता है तो फिर आदमी देखता है कि मुझे क्या दिखा, जो दिखा वो समझ में आता है, जो सुना उस हालत में वो महसूस भी होता है और समझ भी आता है कि मुझे, साथ में उसकी हिकमतें खुलती हैं कि क्यों बताया गया। इल्हाम वो कैफियत है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से प्रोग्राम या कोई बात या कोई नुक्ता जो है वो बराह रास्त जहन में मुंतकिल कर दिया जाता है और वो बंदे को समझ आ रहा होता है कि मुझे ये बात क्यों बताई जा रही है। तो ये जो विरूद, गनूद और मुराकबा, फिर कश्फ और इल्हाम, इसमें ये रूहे हैवानी का आरिफ, वो बंदा जो रूहे हैवानी को जान लेता है, वो जब मुराकबे करता है तो वो इन हालतों में से गुजरते हुए उसको ये यकीन हासिल हो जाता है कि रूहे हैवानी के हवास जो हैं ये पाबंद भी हैं और मुकैद भी हैं, यानी कैद में हैं। फिर जब वो इन हवासों से निकल कर ऊपर, मतलब कि ऊपर उठ जाता है, रूहे हैवानी से निकल कर जब इंसान रूहे इंसानी में दाखिल होता है, तो फिर वो ये महसूस कर लेता है कि इंसान के अंदर मकानियत से आजाद होने की सलाहियत जखीरा कर दी गई है। यानी तब जाके उसे पता चलता है कि भाई टाइम एंड स्पेस से तो मैं जब चाहूं आजाद हो सकता हूं, यानी कम से कम मकानियत से। तो मकानियत से आजाद होने का गुर क्या है, क्या आप माहौल से आजाद हो जाएं? माहौल क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है इसे माहौल, मा मैंने जो कुछ, और हॉल जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है इसे हमने माहौल, मा जो कुछ। अब अल्लाह क्या कह रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि अल्लाह कहते हैं इर्द गिर्द है ही कुछ नहीं सिवाय उसके, इल्ला बिल्ला, जो साथ अल्लाह के या जिसको अल्लाह ने हाजिर किया हुआ है। यानी जब भी आपकी तवज्जो किसी चीज की तरफ जाए, आपके जहन में ये बात हो कि अल्लाह ने इस चीज को यहां मेरे लिए दस्तयाब की है, तो आपका जहन माहौल में उस तरह नहीं अटकेगा जिस तरह के आमतौर पर अटका रहता है। तो इस बात का अंदाजा हो जाता है, तो वो मकानियत से आजाद होना शुरू हो जाता है जब बंदा माहौल की गिरफ्त से जहन आजाद हो जाए। ये है मकानियत से आजादी, उसे ये मालूम हो जाता है कि महज मकानियत पर कायम नहीं है बल्कि रोशनियों से मुरक्कब है। उसके यकीन में ये बात दाखिल हो जाती है कि इंसान की रफ्तार रोशनी के बराबर है। अब देखें ना, इसकी तस्दीक के लिए अब आप यहां बैठे हुए किसी ऐसे बंदे के बारे में सोचें जो अमेरिका में है, तो कितनी देर में हमारा जहन उस बंदे तक पहुंचा, उसी सेकंड के उसी लम्हे में उसी हिस्से में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो क्या हुआ, हमने मकानियत नहीं तय की, मकानियत से आजाद होकर उस बंदे को सोचा। तो इंसान की रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर, और जब कोई इंसान रूहे आजम में दाखिल हो जाता है तो उसके ऊपर मशीयत के इसरार और रमूज खुल जाते हैं। मशीयत अल्लाह की मर्जी, कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला इंसान से क्या चाहता है, ये बात उसको समझ आने लगती है। अब इसमें यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हो गया,
लेकिन ये पेज नंबर है जी 230, इस पे एक चार्ट सा बना हुआ है। जरा गौर करें इस चार्ट पे कि ये तखलीक का पूरा फार्मूला है, तखलीक का फार्मूला इसका उन्वान है। तखलीक के इस फार्मूले में इस्माए इलाहिया, तखलीक का फार्मूला है इस्माए इलाहिया से, ये नीचे को नजूल करते हैं तो क्या बन रहा है, शऊर अव्वल बन रहा है। और ये शऊर अव्वल जो है ये नूर मुफरद है, शऊर अव्वल नूर मुफरद है और इसकी तखलीक क्या है, मलायाला। फिर ये शऊर अव्वल जब मजीद नजूल करता है तो ये शऊर दोयम बन जाता है और इसी का नाम है नूर मुरक्कब। और ये नूर मुरक्कब की तखलीक है मलायका। और फिर नीचे आए तो ये शऊर सोयम है, इसका नाम है नस्मा मुफरद और इसकी तखलीक है जिन्नात। और फिर शऊर चहारम है जो कि नस्मा मुरक्कब से बना है और इसकी तखलीक है अंसरी मखलूक, वो मखलूक जो अनासर के मिलने से बनी है। अब देखिए ये शऊर अव्वल, शऊर दोयम, शऊर सोयम, शऊर चहारम, अब इसको एक और तरह से समझ लीजिए। ये किताब लौह कलम में हजूर कलंदर बाब औलिया ने बयान किया हुआ है, हजूर मुर्शिद करीम ने भी इसकी शरह की है। शऊर चहारम हमारा इनफरादी शऊर है, शऊर सोयम ये हमारा इज्तमाई शऊर है या नोई शऊर है, और शऊर दोयम जो है ये कायनाती शऊर है, और ये शऊर अव्वल जो है ये है वो शऊर जो कायनाती लाशऊर है या अल्लाह का जहन है, या यानी अल्लाह का जहन यानी इस्मा इलाहिया को, यानी अल्लाह अपनी सिफात को कैसे बरत रहा है। अब इस तरह से ये चार नहर, इन्हीं चार शऊरों का नाम चार नहरें हैं, इन्हीं चार शऊरों का नाम नहरे तस्वीद, नहरे तजरीद, नहरे तशहीद और नहरे तजहीर भी है। लेकिन एंगल्स मुख्तलिफ हैं, इन्हें एक ही, चूंकि इनकी वसत बहुत है इसलिए कभी इसको एक जाविये से वाजे किया गया, कभी इसको दूसरे जाविये से वाजे किया। तखलीक का सारा फार्मूला इतनी सी बात है कि ये शऊर अव्वल तखलीक होता है इस्मा इलाहिया से यानी अल्लाह की सिफात से, और इसका स्टेटस है नूर मुफरद का। और ये शऊर अव्वल जब मजीद तनजल करता है तो ये नूर मुफरद जो है ये नूर मुरक्कब बन जाता है, और फिर इसकी तखलीक है यानी इस नूर मुरक्कब के हवाले से जो तखलीक निजाम वजूद में आती है वो मलाइका है। फिर तीसरे दर्जे पे शऊर सोयम है, ये नस्मा मुफरद की दुनिया है, और ये यानी मलाइका और अंसरी मखलूक के दरमियानी जोन है जिसको जिन्नात का आलम कहा गया, इसी को हेवला कहा जाता है। फिर शऊर चहारम है, वहां पे हमारी ये सारी कायनात की, हमारी ये मादी जिंदगी की, दुनिया की नबातात और जमादात और हैवानात और ये जो है ये क्या इंसान का मादी वजूद, ये सब फिर इस चौथे दर्जे की यानी क्लास फोर के मीनियल्स बन जाते हैं इस दर्जे पे। ठीक हो गया जी।